राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन केवल एक मंदिर के निर्माण का आंदोलन नहीं है। क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती? क्या हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे चिंतन से, हमारी संस्कृति से, हमारी वाणी से, हमारी हर चित्रकला से, हमारी और विधाओं से राम को निकाला जा सकता है?
ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 6 दिसंबर 1992 से कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत करते हुए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी सुनिए। समय बाबरी मस्जिद ढाए जाने से कुछ दिन पहले, स्थान अयोध्या।
राम का जन्म स्थान है, यहाँ एक भव्य मंदिर था, उसे तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहाँ से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यहाँ? मगर नहीं, वो कहते हैं देखो राम हिंदुओं के और बाबर मुसलमानों के, और बोले कि राम जन्मभूमि को अगर हिंदू बनाना चाहता है तो बाबरी मस्जिद को मुसलमान ने बचाना चाहिए। ये तर्क बहुत खतरनाक है। हमारा कहना है कि श्री राम भारत के हर नागरिक के पुरखे थे। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान। राम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान में नहीं हो सकता, राम सबके।
6 दिसंबर 1992, स्थान दिल्ली। उस दिन नरसिम्हा राव सुबह 7 बजे सोकर उठे। अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने अगला आधा घंटा ट्रेडमिल पर वॉक कर बिताया। उसके बाद उनके निजी डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी आ गए। दोनों कुछ देर तक तेलुगु और अंग्रेजी में बतियाते रहे। उसके बाद रेड्डी अपने घर चले आए। दोपहर बाद जब 12:20 पर उन्होंने अपना टेलीविजन खोला तो उन्होंने देखा कि हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों पर चढ़े हुए हैं। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने बीबीसी को बताया।
मैं पहले तो अचंभा रह गया था टेलीविजन पे देख के, तो मुझे भी धक्का लगा जो मैं देख रहा था। मगर मेरे मन में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर पे क्या बीतती होगी, तो इस समय जो स्ट्रेस बढ़ गया होगा उनका बहुत ज्यादा, तो एक डॉक्टर का फर्ज निभाने मैं चला गया वहाँ पे। मुझे देख के एकदम अचंभा हो गया, फिर कहा कि क्यों आए इस वक्त, यहाँ पे क्यों आए इस वक्त? तो मैंने कहा कि सर आप थोड़ा इस बाजू वाले कमरे में आ जाइए। तो फिर वहाँ पे आए, फिर थोड़ा अभी नाराज थे। नहीं नहीं, इस वक्त थोड़ी है देखना है मुझे, इस वक्त मैं बिजी हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लूंगा। तो उस समय देखा कि उनका चेहरा लाल था, काफी एजिटेटेड थे, तो मैंने ब्लड प्रेशर लिया, काफी ज्यादा था, पल्स रेट भी देखा तो उसकी गति बहुत तेज थी। तो मैंने कहा सर थोड़ा दवाई मुझे और देनी पड़ेगी आपको। दवाई जो मैंने दिया वो ले लिए, चले गए अंदर।
उसी समय कार सेवक परमेश्वर दास हजारों कार सेवकों के साथ बाबरी मस्जिद की बाढ़ पार कर 450 साल पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रहे थे।
सब लोग यहीं से अपना जय श्री राम और जय श्री राम का नारा मंच पर ही लगाते गए। कार सो की अपना रफ्तार इतना पकड़ लिया, इतना तेज गति से पहुंच गया अंदर और ऊपर चढ़ गए ऊपर तक गुंबज में कि वो किसी को बस के नहीं था, कोई कुछ कहे समझाए, जो जहां था वहीं पर अपना तोड़फोड़ शुरू कर दिया। जो बिल्कुल उत्साह में भरे तरह से लबालब थे वो लोग, तो तोड़ते हुए जो है 3-4 जगह जो फाटक लगे थे चलते बने और अंदर प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के उपरांत उसमें जो है पहले से हाथ में कोई ऐसा भी नहीं, कोई कुदाल फावड़ा ये सब बेलचा हाथ में किसी का कुछ नहीं था। जा करके अंदर में जब गए और देखे कि इसमें कुछ लोग अपने आप में लग के तोड़ने पड़ने लगे, वो लोग जैसे तैसे अगल बगल के स्थान में प्रवेश किए, पूछे कुछ है तो दो, नहीं दिए तो वो लोग ईटा से ईटा पत्थर से पत्थर मारकर, मैंने उस समय उनका उत्साह जो था ना इतना प्रबल था कि उत्साह प्रबल के नाते सारा करतूत हुआ, कांड हुआ। और उसके पहले जो है एक जो है बस जो है कोई साधु कहां से सरकारी बस पीएससी ले लिया और लेते हुए 3-4 फाटक बसवे से तोड़ दिया, स्टार्ट किया और तोड़ते चला गया।
जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, केंद्रीय मंत्री माखनलाल फोतेदार ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन मिलाया। तब तक नरसिम्हा राव कथित रूप से अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुके थे। माखनलाल फोतेदार अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में लिखते हैं।
मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो वायुसेना से कहें कि वो फैजाबाद में तैनात चेतक हेलीकॉप्टरों से अयोध्या में मौजूद कार सेवकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलवाएं। राव ने कहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा, इस तरह की आपात परिस्थितियों में केंद्र के पास जो भी फैसला जरूरी हो लेने की सारी ताकत मौजूद है। मैंने उनसे विनती की, राव साहब कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम उसे एक शीशे के कैबिन में रख सकें और भारत के लोगों को बता सकें कि बाबरी मस्जिद को बचाने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री चुप रहे और लंबे ठहराव के बाद बोले, फोतेदार जी, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ।
नरसिम्हा राव की उत्साहहीन प्रतिक्रिया देख फोतेदार ने राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से मिलने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने उन्हें 5:30 बजे आने के लिए कहा। फोतेदार लिखते हैं,
जब मैं उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकलने लगा तो मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन आया कि 6:00 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। मैं फिर भी राष्ट्रपति से मिलने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और बोले, पीवी ने ये क्या किया है। मैंने राष्ट्रपति से कहा कि वो देश को टेलीविजन और रेडियो पर संबोधित करें। वो इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उनके सूचना अधिकारी ने बताया कि इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होगी और मुझे बहुत शक है कि वो ये अनुमति देंगे।
6:00 बजे नरसिम्हा राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक के 2 विवरण सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं। अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं,
पूरी बैठक के दौरान नरसिम्हा राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सबकी निगाहें जाफर शरीफ की तरफ मुड़ गईं, मानो उनसे कह रही हों कि आप ही कुछ कहिए। जाफर शरीफ ने कहा, इस घटना की देश, सरकार और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माखनलाल फोतेदार ने उसी समय रोना शुरू कर दिया, लेकिन राव बुत की तरह चुप बैठे रहे।
दूसरा विवरण खुद माखनलाल फोतेदार देते हैं। राष्ट्रपति भवन से जब वो सीधे मंत्रिमंडल बैठक में पहुंचे, तब तक बैठक शुरू हुए 20 मिनट बीत चुके थे। आगे की कहानी खुद माखनलाल फोतेदार की जुबानी।
वहां हर एक को चुप देखकर मैंने कटाक्ष किया, सबकी बोलती क्यों बंद है। इस पर माधवराव सिंधिया बोले, फोतेदार जी, आपको पता नहीं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। मैंने प्रधानमंत्री की तरफ देखकर पूछा, राव साहब, क्या ये सही है। प्रधानमंत्री मुझसे आंखें नहीं मिला पाए। उनके बजाय कैबिनेट सचिव ने जवाब दिया कि ये सही है। मैंने सारे कैबिनेट मंत्रियों के सामने राव से कहा कि इसके लिए सीधे वो जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा।
उधर कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि जब कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे, तब नरसिम्हा राव अपने निवास पर पूजा में बैठे हुए थे। वो वहां से तभी हटे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। लेकिन नरसिम्हा राव पर बहुचर्चित किताब हाफ लायन लिखने वाले विनय सीतापति इस मामले में राव को क्लीन चिट देते हैं।
नवंबर 1992 में 2 डेमोलिशंस प्लान हुए थे। एक था बाबरी मस्जिद का, बीजेपी और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का, और अर्जुन सिंह और उनके जो राइवल्स हैं कांग्रेस पार्टी में वो प्लान कर रहे थे। तो दिसंबर 6 में 2 डेमोलिशन प्लान हुए, और नरसिम्हा राव को ये पता था कि अगर मस्जिद गिरे या ना गिरे, नरसिम्हा राव को गिराना चाहिए। और इसीलिए पूरे नवंबर में नरसिम्हा राव ने बहुत कोशिश की कि सबको डिसीशन मेकिंग में इंक्लूड करें। नवंबर 92 में 5 या 6 CCPA कैबिनेट मीटिंग्स थे। मैंने वो मिनट्स देखे, मैंने बहुत से लोग इंटरव्यू किए जो वो मीटिंग्स में हैं। उस मीटिंग्स में एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए। कारण तो साधारण था, क्योंकि लॉ सेक्रेटरी और लॉ ऑफिशियल्स कह रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि Only when law and order has broken down can you dismiss a government, not when law and order is about to break down. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि प्लीज आप प्रेजिडेंट्स रूल इम्पोज करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो दे चोज टू ट्रस्ट कल्याण सिंह। वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल गए, उनके तो मिनट्स तो ऑनलाइन हैं। ज्योति बसु भी आपके उनके स्पीचेस देखिए नवंबर 92 में, वो कह रहे हैं कि यूजुअली वी डोंट सपोर्ट प्रेजिडेंट्स रूल, बट इफ देर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट द मॉस्क वी विल एग्री टू डिसमिस कल्याण सिंह। वो ये नहीं कह रहे थे कि वी डोंट ट्रस्ट कल्याण सिंह को अभी निकालो। दिसंबर 6 के बाद कितने लोग बोले कि नहीं, हम जानते थे कि मस्जिद गिरने वाला है। अगर सोनिया गांधी जानती थी कि मस्जिद गिरने वाला था, तो नवंबर 1992 में उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं, कल्याण सिंह को डिसमिस करो।
सीतापति कुलदीप नैयर के दिए गए विवरण पर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ये विवरण तथ्यों पर आधारित नहीं है।
सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने बुक में लिखा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, तो ये दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ दैट रूमर। तो फिर आप देखिए कि उनको कैसे पता था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, क्या वो वहां पे थे? नहीं, उन्होंने पुस्तक में लिखा कि हम वहां पे नहीं थे, बट एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन मधु लिमये ने मुझे कहा था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, हियर से। फिर आप पूछिए कि मधु लिमये को कैसे पता है कि वो पूजा कर रहे थे, वो तो वहां पे नहीं थे। तो मधु लिमये ने खुद कहा कि मेरा एक सोर्स है पीएमओ के अंदर जिन्होंने मुझे कहा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। तो आप देखिए, ये एक रूमर है, आप मुझे पूछ रहे हैं ये रूमर, और जस्ट आप जाके देखिए कि ये रूमर के पीछे एविडेंस कहाँ है।
इस पूरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जोर देकर कहा कि इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि उन्हें खुद जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह अलग बात है कि उन्हें इस बात पर क्षोभ नहीं बल्कि गर्व था।
अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा।
राजनीतिक विश्लेषक और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय का मानना है कि राव ने जानबूझकर मस्जिद गिर जाने दी, क्योंकि वो बीजेपी को उन्हीं की राजनीति में हराना चाहते थे।
जब अयोध्या आंदोलन तेज हुआ और बाबरी मस्जिद पर खतरा मंडरा रहा है, तो उस खतरे को कम करने की कोई कोशिश पीवी नरसिंह राव ने नहीं की। मेरा अपना मानना है, तथ्यों के आधार पर, लोगों से बातचीत करने के आधार पर, और अब खुद पीवी नरसिंह राव के जो प्रेस एडवाइजर रहे पीवी आर के प्रसाद, उन्होंने एक किताब लिखी है व्हील्स बिहाइंड द वेल। उस किताब में पीवी आर के प्रसाद बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मस्जिद को गिरने दिया, और वे वहां पर मंदिर बनाने के लिए उत्सुक थे, उसके प्रयास किए, इसलिए रामालय ट्रस्ट बनवाया। मुझे भी एक अवसर ऐसा मिला जब हम पीवी नरसिंह राव से, उन दिनों मस्जिद गिराई जा चुकी थी, तो तीन बड़े पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, प्रभास जोशी और आर के मिश्र, बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद ये तीनों गए पीवी नरसिंह राव से मिलने, मैं उनके साथ था। ये लोग जानना चाहते थे कि आपने 6 दिसंबर को ऐसा क्यों होने दिया। सबको सुनने के बाद नरसिंह राव, मुझे याद है, उन्होंने कहा, क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती? मैं इसका अर्थ ये निकालता हूँ कि अपनी राजनीति के तहत और ये समझ करके कि बाबरी मस्जिद ढहा दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति और विश्व हिंदू परिषद की राजनीति जो है हमेशा के लिए, जो मंदिर की राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी और उसको कांग्रेस हथिया लेगी। लक्ष्य से प्रेरित होकर पीवी नरसिंह राव ने मस्जिद को ढहने दिया और उसका जो दुष्परिणाम हमारी भारतीय राजनीति पर हुआ है वो लंबे समय तक उसको मिटाया नहीं जा सकता।
लेकिन राव के निकटवर्ती रही पत्रकार कल्याणी शंकर का मानना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में राव की भूमिका को ज्यादा से ज्यादा एक राजनीतिक मिसकैलकुलेशन कहा जा सकता है।
वो तो सोच रहे थे कि वो वाजपेयी जी, अडवाणी जी, इन लोगों ने अश्योरेंस दिया कि कुछ होगा नहीं, उनको बिलीव कर दिया। और दूसरा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सेंटर को रिसीवरशिप लेने के लिए मना कर दिया, तो सेंटर रिसीवरशिप नहीं लेने से उधर स्टेट का अधिकार है वहाँ अयोध्या के अंदर, वो अपना सेना को भेजना नहीं भेजना, और कल्याण सिंह तो वो उनको अंदर आने को दिया ही नहीं है। इस वजह से सेना अल्टरनेट थिंग वॉज आउटसाइड। तो ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी था और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह से भी प्रॉब्लम था, और ये बिना सोच के ये गिर भी गया। इस वजह से शायद उन्होंने मिसकैलकुलेट किया होगा, लेकिन काम नहीं किया, ये मैं नहीं मानती हूँ। और आप उनका किताब पढ़िए, मिनट टू मिनट क्या क्या हुआ, कैसे बात किया, ये सब दिया है। और ये मिथ ये भी क्रिएट कर रहे हैं कि उन्होंने पूजा कर रहे थे, दूसरा कुछ करते, क्या आप पागल आदमी होगा क्या, वो बाबरी मस्जिद गिर गया, घर में पूजा करेंगे कोई भी?
मैंने मशहूर पत्रकार सईद नकवी से पूछा, क्या इस मामले में राव की भूमिका को ज्यादा से ज्यादा एक राजनीतिक मिसकैलकुलेशन या एरर ऑफ जजमेंट माना जाए?
वो और चौहान दोनों, यानी दोनों खामोश बैठे रहे पूरे दिन, उनके होम मिनिस्टर थे, मस्जिद दिन भर गिर रही है और रात को उनके अफसरान हमको दिखाई देते हैं यहाँ पार्टी में तो सब तिलक लगाए हुए, यानी गोया जैसे सेलिब्रेशन करके आ रहे हैं। वो एक मुबहम मामला है, मैं एलिज नहीं करूँगा कुछ, लेकिन असर जो मुसलमानों पे हुआ उसके बाद ये कि 140 सीटें आ गई, कभी इतने कम कांग्रेस के नंबर नहीं हुए थे, उसके बाद पार्टी खत्म हो गई।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि बाबरी मस्जिद का गिरना न रोक पाना पीवी की सबसे बड़ी असफलता थी। वो अपनी आत्मकथा द टर्बुलेंट ईयर्स में लिखते हैं।
बाद में जब नरसिम्हा राव से मेरी अकेले में मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें खूब सुनाई। मैंने कहा, क्या आपके अगल बगल कोई नहीं था जिसने आपको आने वाले खतरों के बारे में आगाह नहीं किया? क्या बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने पर होने वाली वैश्विक प्रतिक्रियाओं का अंदाजा नहीं लगा पाए? कम से कम अब तो मुसलमानों की आहत भावनाओं को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाइए। जब मैंने ये कहा तो हमेशा की तरह उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने कई दशकों से उनके साथ काम किया है और उनको जाना है। मुझे उनका चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं उनके दुख और निराशा को साफ महसूस कर पा रहा था।
कुछ भी हो, इस घटना से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत बदनामी हुई, बल्कि इसने भारतीय समाज को इतनी बुरी तरह से बांट दिया जिसको अभी तक बांटा नहीं जा सका है। कुंवर नारायण की एक कविता याद आती है।
हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य, तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय जिसके 10-20 नहीं अब लाखों सर लाखों हाथ हैं और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य, एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित नहीं, चुनाव का डंका है। सविनय निवेदन है प्रभु की, लौट जाओ किसी पुराण किसी धर्म ग्रंथ में सकुशल सपत्नीक। अब के जंगल वो जंगल नहीं जिनमें घूमा करते थे वाल्मीक।
रेहान फतेह, BBC दिल्ली।